करीब पौने घंटे बाद इनाया अब भी उसी पोजीशन में बिल्कुल स्थिर बैठी हुई थी। चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन माथे पर कुछ सिलवटें अब भी मौजूद थीं। देखकर लग रहा था जैसे गहरी नींद में हो। तभी दरवाज़ा खुला और एक जोड़ी कदमों ने रूम में एंट्री ली। उस शख्स की गहरी आंखें इनाया के चेहरे पर ठहर गईं और धीरे धीरे वो उसके तरफ बढ़ने लगा। इनाया अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। उस शख्स ने उसके माथे पर पड़ी सिलवटों को अपनी उंगलियों से फैलाकर ठीक करने की कोशिश की। फिर उसकी उंगलियां इनाया के माथे से फिसलकर उसके गाल पर ठहर गईं। उसने अपनी दूसरी हथेली बेड पर इनाया के कमर के पास रखी और उसके चेहरे की तरफ झुक गया। उसकी गर्म सांसों ने जैसे ही इनाया के चेहरे को स्पर्श किया, इनाया के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपना चेहरा फेरा और साथ ही उस शख्स के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर दिया। इनाया, कायरव की ठहरी हुई सर्द आवाज इनाया के कानों के रास्ते सीधे उसके दिल में उतरी और उसकी धड़कनों को बेचैन कर गई। उसका गला भर आया और चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो गया, लेकिन ना तो उसने खुद को कमजोर पड़ने दिया, ना ही आंखें खोली। बोलने की हालत में तो वो थी ही नहीं। इनाया, कायरव ने एक बार फिर बेहद प्यार से उसे पुकारा, साथ ही अपनी हथेली से उसके गाल को भी छुआ। इनाया की पलकें भीग गईं और पल भर में झुकी पलकों के नीचे से फिसलती बूंदें उसके चेहरे को भिगो गईं। कायरव एकदम से घबरा गया। हे आना, तुम रो क्यों रही हो? जानू, क्या हुआ? आंखें खोलो, देखो मुझे, रोना बंद करो, बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? इनाया, कुछ तो कहो यार, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे घबराहट होने लगी है। कायरव ने इनाया के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। उसके आंसू पहुंचने को हुआ, लेकिन इनाया ने उसके हाथ को हटा दिया, अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को रगड़कर साफ किया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मतलब साफ था, ना तो वो उसे देखना चाहती है और ना ही कोई बात करना चाहती है। कायरव ठिठका और पल में उसकी आंखें गहरा गईं। नाराज हो क्या? इनाया की खामोशी अब भी नहीं टूटी। वो उसी तरह उससे मुंह भेरे बैठी रही। कुछ नहीं बोलोगी? इतना ज्यादा गुस्सा हो कि तुमने ये खामोशी अख्तियार कर ली है? इनाया, इधर देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कायरव ने इनाया की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया, पर उसने अपनी आंखों को कसके भींच लिया। इनाया, आंखें खोलो और देखो मुझे, बताओ मुझे क्यों रो रही हो तुम? अगर नाराज हो तो नाराजगी जताओ, यूं खामोश तो मत रहो। कायरव कुछ परेशान नजर आने लगा था। इनाया की ये खामोश नाराजगी उसे तड़पा रही थी। इनाया की पलकें कांप गईं, आंखें खोलीं तो नजर सीधे सामने बैठे कायरव की नजरों से जा टकराईं। आंसुओं से लबालब भरी सुर्ख आंखें देखकर कायरव स्तब्ध रह गया। इनाया, उसकी आवाज कांप गई। हो गया लंच? इनाया की खामोशी टूटी। उसकी आवाज में झलकता भारीपन कायरव ने भी महसूस किया। मुझे नहीं पता था कि रात के 9:30 बजे लंच होता है। इनाया ने अपने फोन में टाइम दिखाया और दर्द में मुस्कुराई। इनाया, कायरव की आवाज जैसे उसके गले में फंस रही थी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन इनाया ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। कोई सवाल नहीं कर रही मैं तुमसे, कोई जवाब भी नहीं चाहती। एक्चुअली मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहती। जाओ जहां थे वहीं वापस चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सॉरी। लंच पर आने का बोलकर तुम अब आ रहे हो। सारे दिन मैंने पागलों जैसे तुम्हारा इंतजार किया, फोन पर फोन करती रही, यह सोच सोच कर परेशान होती रही कि पता नहीं तुम कहाँ हो। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया कि बिना बताए चले गए? फोन भी नहीं लग रहा, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? पप्पा से प्रार्थना करती रही कि तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें जल्दी से वापस भेज दे, लेकिन तुम्हें किसी बात का कोई एहसास तक नहीं। यहाँ टेंशन से मेरी जान निकली जा रही थी और तुम बिल्कुल रिलैक्स थे, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं तुम्हें। ये तक एहसास नहीं कि घर पर तुम्हारी एक बीवी भी है जो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अगर किसी काम में फंस भी गए हो तो कम से कम एक बार कॉल या मैसेज करके एटलीस्ट उसे इन्फॉर्म तो कर दो। तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई ना? तुमने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, तो अब भी मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से, नहीं बात करनी मुझे तुमसे, नहीं देखना तुम्हारा चेहरा। गुस्से में इनाया की सांसें तेज चलने लगीं। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी और चेहरा गुस्से व नाराजगी से भरा था। वो दर्द, वो डर, वो तड़प जो उसने महसूस किया, उसकी आवाज में झलक रहा था। कायरव के होंठों पर जैसे चुप्पी लग गई थी। कहीं ना कहीं अब उसने एहसास हो रहा था कि उसने क्या किया और उसका इनाया पर कितना बुरा असर हुआ। उसके पास शायद कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे, इसलिए वो बस खामोशी से उसे देखता गया। इनाया अब बेड पर लेट गई, उसकी पीठ कायरव की तरफ थी। कायरव कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा, फिर उठकर बेड के सामने लगे टेबल के पास आया और वहां रखा फ्लावर्स का बुके उठा लिया जो वो अपने साथ लेकर आया था। उसमें रंग बिरंगे छोटे बड़े फूल बड़ी ही खूबसूरती से सजे थे और उनकी मिलीजुली सी खुशबू हवा को महकाने का काम कर रही थी। इनाया करवट लेकर लेटी एकटक सामने की दीवार को घूर रही थी। अचानक ही उसके सामने एक वाइट ट्यूलिप आ गया, साथ ही कानों में कायरव की धीमी अट्रैक्टिव वॉइस पड़ी। आई एम ट्रूली सॉरी, आवाज कान के बेहद करीब से आई थी। आवाज में सिंसियरिटी झलक रही थी, लेकिन इनाया के चेहरे पर अब भी नाराजगी के बादल छाए हुए थे। वो बस खामोशी से उस फ्लावर को घूरने लगी। कुछ सेकंड बाद ब्लू हायसेंथ आ गया। आई एम ट्रूली सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी। इनाया ने अब भी कुछ नहीं कहा। अब की बार कायरव ने पूरा भूखे ही उसके सामने कर दिया और संजीदगी से बोला, इनाया आई एम सॉरी, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया। सच में मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकल गया था, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई और इतनी टेंशन में तुम्हें इन्फॉर्म करने का ख्याल मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्किप हो गया। टाइम भी नहीं मिला, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। स्टिल मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इनाया उठकर बैठ गई तो कायरव भी उसके सामने बैठ गया और भूखे उसके तरफ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, कर दो माफ प्लीज। नहीं करूंगी मैं तुम्हें माफ, तुम मुझे लंच का बोलकर अब घर आ रहे हो, मुझे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्म भी नहीं किया। मैं दोपहर से भूखी प्यासी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अपने दिल को बार बार समझा रही थी कि तुम ठीक होगे, बस यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम सही सलामत वापस लौट आओ। तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि तुम्हें ध्यान नहीं रहा था, सॉरी कहकर बात को खत्म भी कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे लिए भले ये छोटी सी बात हो, लेकिन मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है। मैं ही जानती हूँ कि मैंने ये कुछ घंटे कैसे बिताए हैं, क्या गुजरी है मेरे दिल पर, पल पल के साजमाइश से गुजरी हूँ मैं, किस डर को महसूस किया है, इतना रोना आ रहा था मुझे, दिल इतना घटा आ रहा था मेरा। बोलते बोलते नाया को वही सब दोबारा याद आ गया और उसके गले में आंसुओं का गोला अटक गया। आवाज बाहर ही नहीं निकली। आंखों में आई नमी छुपाते हुए उसने अपना चेहरा फेरना चाहा। अगले ही पल कायरव ने उसके सर को अपने सीने से लगा लिया, एक पांव उसकी कमर पर लपेटी ताकि वो उससे दूर ना हो सके, और दूसरी हथेली से धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। कायरव का स्पर्श और उसके प्यार की गर्माहट पाकर इनाया की नाराजगी, गुस्सा सब बर्फ जैसे पिघल गया और इनाया बहुत ही प्यार और एहतियात के साथ उसे अपनी बाहों में समेटने लगा। उसकी आंखों साथ बहते आंसू कायरव के सीने को भिगोने लगे। उस रूम के सन्नाटे में उसकी सिसकियों की धीमी धीमी सी आवाज गूंज रही थी।
कायरव ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब इनाया का रोना कम नहीं हुआ तो कायरव ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। बस बस, और कितना रोगी, देखो तुम्हारा पूरा चेहरा कैसे आंसुओं से भीग गया है, आंखें और नाक तो टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। देखो मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, चलो अब चुप हो जाओ। कायरव ने बड़े ही प्यार से उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछ दिया, लेकिन इनाया अब भी सिसक रही थी। जान, और कितना रोगी, चुप हो जाओ घेज। तुम बात मत करो मुझसे, इनाया ने रूंधे स्वर में कहा और कायरव के हाथ को हटा दिया। टू बी कंटिन्यूड।